त्यागि सागर सुधी जो विद्यागि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग पिछले दिनों से इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि हमें ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हमारा जीवन अच्छा या बुरा हम ही बनाते हैं। कोई यहाँ ना हमारे जीवन को मुश्किल में डालता है ना कोई हमारे जीवन को आसान बना सकता है। हम ही अपने भावों के द्वारा अपने जीवन को कठिन और मुश्किल बना लेते हैं और हम ही चाहें तो अपने परिणामों के द्वारा, परिणामों की निर्मलता के द्वारा अपने जीवन को आसान और अच्छा बना सकते हैं। और हमने ये भी समझा है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के चरणों में बैठकर हमें सच्ची दृष्टि मिलती है। और जब सच्ची दृष्टि मिलती है तो हमारी अपनी जो मान्यताएं हैं, जो मिथ्या मान्यताएं हैं, वो धीरे धीरे हटने लगती हैं और सच्ची बात हमें मालूम पड़ने लगती है। हम अपने जीवन के बारे में जितने असावधान, जितने गाफिल और जितने लापरवाह हैं, वो सब हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, सचमुच हमने अभी तक अपने जीवन को ठीक ठीक समझा ही नहीं। या तो हम अपने जीवन को मजबूरी मान करके जीते हैं, या हम अपने जीवन को अपनी नियति मान करके जीते हैं, पर सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठ करके इस बात का हमें विश्वास हो जाता है कि नहीं, जिसे हम मजबूरी कहते हैं, जिसे हम नियति मानते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी अपनी कमजोरी है। और वो कमजोरी हमारे अपने अज्ञान की वजह से है। हम अपने उस अज्ञान को दूर करके अपनी उस कमजोरी को भी हटा दें तो हमारा अपना स्वभाव तो एकदम निर्मल है। तब इस तरह विचार करते करते और हम अपने दृष्टि को, अपने ज्ञान को, दोनों को निर्मल बनाकर अब इस प्रयास में हैं कि हमारे परिणाम भी निर्मल हो। भैया, जिसकी दृष्टि निर्मल हो उसे ही ये बात सूझेगी कि मुझे अपने परिणाम भी निर्मल करना चाहिए। कई बार परिणाम निर्मल हो जाते हैं और दृष्टि खोटी रही आती है। हां, लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल है उसके परिणाम खोटे हों ऐसा देखने में नहीं आता। उसके परिणामों के द्वारा दूसरे का बिगाड़ या कि स्वयं का ही बिगाड़ संभव नहीं जिसकी दृष्टि निर्मल है। यह कसौटी है। हम लोग बहुत जल्दी अपने को सम्यक दृष्टि या धार्मिक मान करके संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब जरा विचार करते हैं तो लगता है कि दृष्टि निर्मल होने पर हमारा जीवन कितना परिवर्तित और कितना अच्छा हो जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर लगने लगता है कि नहीं, अभी हमें और प्रयास करना चाहिए, अभी हमें अपनी दृष्टि को और निर्मल बनाना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी चर्चाओं के बाद हमने एक दो दिन पहले यहां तक भी समझ लिया था कि हमारे जीवन में, हमारे आचरण में जितना जितना राग द्वेष कम हो उतनी ही निर्मलता आएगी। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलो जो जग कीच में। मुझे वो आचरण जिससे कि जिसके कि बिना जिनेंद्र भगवान भी जिनेंद्र भगवान नहीं बने और संसार में भटकते रहे जब तक कि उन्होंने उस आचरण को स्वीकार नहीं किया, मुझे अब उस आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही मैं बाहर से स्वीकार करूं, भीतर तक उसकी छाया पड़ेगी, उसकी रोशनी भीतर तक जाएगी। मुझे अब बाहर में 5 पापों से विरक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमने पिछले दिनों विचार किया है। हम सबने, आपने भी विचार किया होगा कि जैसे बने भैया तैसे, और जरा समझ लें कि घर गृहस्थी में रह करके वैसे 5 पापों से बचना आसान नहीं है, पर अनावश्यक जो पाप हम करते रहते हैं, जो निष्प्रयोजन हमसे पाप होता रहता है, कम से कम उस पाप को समझकर उससे तो बच ही सकते हैं, शुरुआत तो कर ही सकते हैं। वे 5 पाप हमारे अपने कषाय परिणाम के द्वारा ही होते हैं। कषाय कारण बनती हैं पापों में, पाप तो बाद को होते हैं, कषाय पहले होती है। निष्कषाय व्यक्ति से पाप संभव नहीं है। हां, ऐसी बात है, जिन क्षणों में हम पाप करते हैं कषाय से युक्त होकर बंद करते हैं, कषाय कारण है, पाप तो कारी है। और उसकी कषाय सबसे बड़ी कषाय अगर है, दिखने में तो क्रोध कषाय बड़ी मालूम पड़ती, लेकिन सबसे खतरनाक कषाय है लोभ। उस लोभ के चलते मैं सारे पाप करता हूं, और अगर मेरा लोभ कमती हो जावे तब फिर मेरे से पाप संभव नहीं होगा। एक वो स्थिति बनती है जीवन में जबकि पाप से बचना मुश्किल होता है, और जीवन में वो स्थिति भी बन सकती है जब पाप करना मुश्किल हो जाए। बताइए, पाप से बचना जितना मुश्किल है उतना ही पाप करना मुश्किल हो जाए, मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मेरे से किसी को तकलीफ पहुंचे ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। ये कब आता है, ये लोभ कब कमती होता है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। जितना लोभ कमती हो जावे गृहस्थी में अगर देखा जाए तो सारा खेल लोभ का ही है, देख लो आप। और इसीलिए शायद गृहस्थ को सबसे पहले कहा गया कि दान दो, और कुछ करो चाहे नहीं करो दान दो। पूजा करोगे तो उतनी द्रव्य भगवान के सामने अपने आप चढ़ानी पड़ेगी, उतना लोभ तो कमती होगा। संतोष धारण करो, ये जो है वो गृहस्थ को सबसे पहला उपदेश देते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को दीक्षा देते समय जो उपदेश दिया था वो याद है आपको। आचार्य श्री खुद बताते हैं कि उन्हें 2 वाक्य हमेशा याद रहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा के समय कहा था कि बैठे हुए शावकों को मेरा उपदेश ये है कि अपने से कमती भौतिक सुख सुविधा वाले की तरफ देख करके अपनी सुख सुविधाओं को बहुत मान के संतोष धारण करना। अपने से कम भौतिक सुख सुविधा वाले को देखते रहना कि हमारे पास तो इतनो है, वो के पास तो कछु नहीं है, ऐसा विचार करके संतोष धारण करना। और मुनि बनते समय, मुनि बनने के बाद फिर क्या देखना, अपने से अधिक साधक की तरफ देख करके विचार करना कि मैं तो अभी कुछ साधना कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझे तो और अधिक साधना करना। अगर दो ही जने उल्टो काम करने लगे तो अपने से अधिक समृद्धि वाले भौतिक सुख वाले को देख देख करके और असंतुष्ट हो करके और अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, वे गृहस्थ हैं, और अपने से कमती तपस्या वाले को देख के अपनी तपस्या को ही सब कुछ मान के उसी में फूले नहीं समाते हैं, तो फिर मुनि बनने से भी कोई लाभ नहीं। बताइएगा कैसा उपदेश था, मैं आज विचार करता हूं कि सारी बात ही कह दी। क्यों गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वो संतोष धारण करे, क्योंकि संतोष के द्वारा ही लोभ को कमती किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं, और लोभ के कमती करे बिना कोई पाप से बच नहीं सकता। नियम ले लो आप, अनुव्रत भी ले लो आप, लेकिन अगर आपका लोभ कम नहीं हुआ तो कहूं न कहूं से रास्ता निकाल के और आप अपना कर ही लोगे काम। हां, संतोष धारण करना आवश्यक है। अब ये कह तो दिया कि संतोष धारण करो, अब करें कैसे? चार जनों को बाहर देखते हैं, संसार में रहना है तो कितनों भी अपने मन को समझाओ लेकिन मन मानता नहीं है। थोड़ा और, थोड़ा और, जो इतना और हो जाते उसको फिर रोकें दे, फिरने करें। अब ऐसा लगा ही रहता है भाव, कहते अब हम दूसरे ढंग से इस चीज को जीतने का उपाय बताते कि लोभ को तो जीतना है। अच्छा ये बताओ, जिस व्यक्ति के बहुत लोगों के प्रति अच्छे भाव होवें, जिस व्यक्ति के बहुत से आत्मीय जन होवें, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता? उस व्यक्ति को अब इनके तैसे बुलवा आओ है सो उते जाने हैं, उनको कछु देने हैं, उते से आओ है सो उनको कछु देने हैं, सब जगह से आया है सबको कुछ ना कुछ देना है। और जिस व्यक्ति का प्राणी मात्र अपना हो जावे, बताइए उसका लोभ कमती होगा कि नहीं होगा? ये एक विचार है। जो जितने लोगों से आत्मीय भाव रखेगा, जो जितनों लोगों को अपना मानेगा, वो उतना कम पाप कर पाएगा, ये ध्यान रखना। संबंध इसीलिए बनाए थे कि जे तुम्हारे फलाने आए, जे तुम्हारे जी आए, अब इनके प्रति तो कम से कम अपने भाव संभारो, बिगाड़ो ने। अरे कोई जिसको अपना मान लेता है उसको तकलीफ पहुंचाने का भाव करता है क्या? उसकी हिंसा कर सकता है क्या? आप अपने घर में एक ठो गाय भी पाल लो और को अगर दूसरों को लाठी मार देवे तो आप लड़वे तैयार हो जाते कि हमारी गैया को क्यों मार दिया? वैसे आप दूसरे की गैया को सो मारवे तैयार, मगर हमारी है उसको हम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अपने घर में बिल्ली भी पली हो, खरगोश पला हो, तो अपने पास सुला लेते हैं उसको, इतना प्रेम हो जाता। अगर ये प्रेम बढ़ता चला जाए, प्राणी मात्र से हो जाए, तो क्या हम किसी को दुख पहुंचा सकते हैं? बल्कि किसी को दुख पहुंच जाए, किसी अपने को जिसको हम अपना मानते हैं, तो वो सहा नहीं जाता, अपने दुख हम सह लेते, लेकिन जिसको हमने अपना माना उसको जरा सा भी कुछ दुख हो जाए तो सहा नहीं जाता, असही हो जाता। कैसी संवेदनशीलता हमारे भीतर जाग जाती है, कैसा लोभ हमारा कम हो जाता है। फिर हम अपना जिसको मान लेते हैं उससे झूठी बोलते हैं क्या? अगर बोल भी देते हैं तो हंसी हंसी में बोल देते, फिर कहते के कहो हमने कैसे बुद्धू बनाओ, झूठी बोल ली। हमारे मन में कोई उसके प्रति खोटा भाव नहीं रहता, झूठी बोलने के बाद भी हम क्यों अपने व्यक्ति का कोई सामान चुरा करके अपने पास रखेंगे? क्यों हम चोरी करेंगे? हमारा अपना व्यक्ति, उसका सारा सामान हमारा है, हमें उसका सामान चुराने की जरूरत क्या है? बताइएगा, हम अनायास चोरी से बच जाते हैं। अगर ऐसा आत्मीय भाव हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, बिना लोभ के अभाव में ये आत्मीय भाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन लोभ कम होता जाए अपनापन बढ़ता चला जाए या अपनापन बढ़ता चला जाए तो लोभ कमती होता है। दोनों साइमल्टेनियस होने वाली प्रोसीजर हैं, एक साथ होती। मैं शास्त्रीय भाषा का उपयोग करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत सामान्य सी चीज आपको कह रहा हूं, आप इसको बिल्कुल सांसारिक मत मानिएगा, बहुत बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है और बहुत रिलीजियस भी है, बहुत प्रैक्टिकेबल है। मुझे अच्छा लगता है वो सब जो कि हम कर सकें, सिर्फ हवाई बातें और ऊपर से निकलने वाली बातें करने का मेरा मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं आपसे बताऊंगा आपको हम कितना कर सकते हैं, कहां से हम गुजर रहे हैं, कहां हम खड़े हैं, जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करनी है। हम जहां खड़े वहीं से ना हम शुरू करेंगे, हम तो उसी लोभ में खड़े हुए हैं। हमारे मन में जरा भी संतोष नहीं है, हमारे तो पराये ज्यादा हैं, अपने कम हैं, हम तो ऐसे में खड़े हुए हैं। हम अपने शरीर को भर पराया नहीं मानते जो वास्तव में पराया है, दुनिया भर को पराया मानते हैं। पराया यहां से शुरू होता है, वहां से शुरू नहीं होता कि जी पराया आए, ऐसी बात कह रहा हूं आपसे। पराये की बात तो हम बहुत जल्दी तत्पर हो जाते कि जो पराया है उससे हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। बताइएगा पराया कौन है? सबसे निकट है जो, वो है सबसे ज्यादा पराया। इससे ज्यादा कोई पर पदार्थ है? पर पदार्थों का त्याग करना आसान है, लेकिन ये पर पदार्थ है, इससे ममत्व छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो इस तरह हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कहां बैठे हैं, उसी लोभ में बैठे हैं, संतोष नहीं है, असंतोष बहुत है, हम क्या करें। तो उपाय यही है लोभ को कम करने का कि हम अपना दायरा सीमित न रख के बढ़ाते चले जाएं। जे भी हमारे हैं भैया, जे भी हमारे हैं, बहुत अच्छा। जब हमारे हैं तो उनके प्रति मैं अपने मन को कलुष कर ही नहीं सकता, ना मैं हिंसा करता हूं, ना मैं उनसे झूठ बोल सकता हूं, ना मैं उनके सामान की चोरी करूंगा। मैं तो जरा सा इशारा करूंगा कि भैया वो चीज, अरे आप ले लो, उसमें क्या, जैसी आपकी वैसी, जैसी हमारी वैसी आपकी। चोरी और दान में फर्क इतना ही सा है कि दूसरे की चीज चुराने का भाव होना चोरी और दूसरे को अपना बनाने का भाव दान। बताइए, दान की परिभाषा है दूसरे को अपना द्रव्य दे करके अपना बनाने का भाव, जहां है वहां दान है। क्यों देते हैं दान? उस परिणाम, वो आत्मीय भाव है। तो इस तरह, और फिर जिसको हम ब्रह्मचरी कहते हैं वो भी तो हमारे भावों की निर्मलता ही है। जो हमारा अपना है उसके प्रति हम अपने भाव काय को बिगाड़ेंगे? भाव बिगड़ भी जाएंगे तो रोएंगे हम कि हमारे भाव क्यों बिगड़ गए। हां, अगर हमने उसको अपना माना है तो, अगर कोई हमारा संबंध निकल आता है तो हमारी दृष्टि खराब हो जाए और बाद में मालूम पड़े कि हमारा तो संबंध है इनसे, तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते, कैसा हमें लगने लगता, अरे ये कैसा भाव हमारे अंदर आए, आता है कि नहीं आता। ये संसार में अपन रोज देखते हैं। तो हम अपने भाव भी नहीं बिगाड़ेंगे अगर हम अपना मान लेंगे, और फिर जोड़ जोड़ के रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परिग्रह के प्रति उतनी मूर्छा नहीं रहेगी। जी हमारे अपने हैं भैया, उनके पास कमती है, जो हमारा तुम ले लो, जी हमारा तुम ले लो, सब ले लो, सब ले लो वाली भावना हमारे भीतर में आ जाएगी। जैसे मुनि महाराज के आने पर महाराज को तो इतना ही सा लेना है, लेकिन भाव कैसे बनते हैं कि महाराज सब ले लेते। कहे महाराज हम आए हैं, हां अगर हमारे नहीं है महाराज, ऐसा भाव अंदर में आ जावे तो दोगे आप? दे ही नहीं सकते, शुरू ही नहीं कर सकते, पलगाने नहीं हो सकता। हमारे महाराज आ गए, महाराज आ गए, अरे ये पता नहीं लगने वाला आत्मीय भाव है भीतर, कहीं ना कहीं श्रद्धा है जो ऐसे प्रकट होती है। हम तो देखते हैं, अम्मा लोगों को देखते हैं, जा ले, थोड़ी जा ले लेती महाराज, अच्छी ठंडा ही ले लेती, तनक गर्मी बहुत, आप बताओ। जैसे लड़का नहीं हुए अपनो, अब ऐसा भाव आता कि नहीं आता, ये कैसे क्यों बनाया, ये सब मैं ये सोचता हूं, ये सारी चीजें क्यों निर्मित हुई हैं, हमारे परिणामों की संभाल के लिए। आपको कुलभूषण देशभूषण की घटना सबको मालूम, बताइए। वो दोनों भाई पढ़ने के लिए चले गए थे और पढ़ के बहुत दिन के बाद आए थे, जब घर वापस लौटे तब तक तो उनकी जो छोटी सी बहन थी बहुत बड़ी हो गई थी, और जब वे राजकुमार दोनों रथ में बैठ करके वापस आ रहे थे तो दूर से उनकी दृष्टि पड़ी कि छज्जे पर जो बेटी खड़ी है, किसी की बेटी है, वो बहुत सुंदर मालूम पड़ती है, मैं तो उससे विवाह करूंगा। दोनों भाइयों के मन में ये बात आ गई, कोई बेजा बात नहीं थी, विवाह करने की बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हां ऐसा मानिएगा उसको, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा कि क्यों आ गई। आ गई बात मन में, और दोनों के मन में इतनी बात आती तो भी ठीक था, दोनों के मन में जहां ये लोभ जागृत हुआ वहां से पाप होना शुरू हो गया। जब तक आई थी बात विवाह करने की, कोई खोटी बात नहीं थी, लेकिन अगर इसको छोटा भाई सोचता है कि अगर इसको बड़ा भाई स्वीकार करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं रहूंगा या बड़ा भाई, और छोटा भाई सोचता है कि बड़ा भाई सोचता कि छोटा भाई अगर इससे विवाह करेगा तो दोनों में से एक रहेगा, और ऐसे ही दूसरा वाला भी सोचता, दोनों सोचते हैं, और सोचते सोचते रथ चला जा रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा उनको, जहां लोभ जागृत हो जाता वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता, असंतोष सब तरफ, कौन स्वागत को आया, कौन नहीं आया, कौन ने जय जयकार की, सारे रास्तों पर लोग जय जयकार कर रहे हैं, कुमार लौट के आए हैं, सबसे सुंदर हैं, विद्या अध्ययन करके आए, कुछ नहीं दिख रहा उनको, सिर्फ ये दिख रहा है, अभी तो ये दिख रहा था कि विवाह करूंगा, अब तो ये दिख रहा है कि जो बाधक बनेगा उसको पहले हटा दूंगा। हाँ ऐसी तो अपने जीवन में आता है, एक चीज के प्रति लोभ जागृत होता है और फिर उसको हासिल करने को निकल पड़ते हैं, और जो जो बाधक बनता है हटा उसको रास्ते से, झूठ बोलना पड़े तो झूठ, हिंसा करनी पड़े तो हिंसा, कैसे ही हड़पना पड़े तो हड़प लूंगा मैं, अगर दुर्व्यवहार करना पड़े तो दुर्व्यवहार कर लूंगा, मेरे लोभ के चलते मैं सब पाप कर सकता, यही तो मेरे जीवन की मुश्किल है, इसी को तो मुझे आसान बनाना है, इसी से तो मेरा जीवन बुरा बना हुआ है। अगर ऐसा विचार करें अपन, और दोनों की तलवारें निकल आती हैं, बताइएगा, तलवार पे हाथ आ गया है कि अगर बीच में बाधक बने, और जब तक वो इतने विचारों में मग्न थे कि तलवार हाथ में आए तब तक तो रथ दरवाजे पर पहुंच गया है महल के, और जिस बिटिया को ऊपर देख करके मन में ये लोभ जागा था कि मैं इससे विवाह करूंगा, उसको मां के बाजू में खड़े आरती उतारते देखते, कौन है ये मां, ये कौन है, अरे तुम भूल गए, अच्छा भूल कैसे गए, तुम छोटी सी थी, ये इतनी बड़ी हो गई, ये तुम्हारी बहन है, अब बताइएगा। दोनों की तलवारें हाथ में हैं, दोनों एक दूसरे को मारने तत्पर थे, तलवारें नीचे गिर गई हैं, धिक्कार है, मुकुट नीचे गिर गया है, कपड़े उतार के नीचे फेंक दिए, लोग हक्के वक्के हैं कि हो क्या गया राजकुमारों को, इतने अच्छे से आए थे, आरती ज्यों की त्यों धरी रही, मां भी मुश्किल में है, बहन भी मुश्किल में है, राजा पिता भी बहुत मुश्किल में, कि क्या हुआ इनको, किसने क्या कह दिया, अभी कहते किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे अपने परिणामों ने हमें इतना पतित कर दिया, इस बात का दुख है। और रथ से उतर करके मुनि हो जाते, कुलभूषण देशभूषण महाराज, हमारे अपने दिन, हमारे अपने मन में हमारे संबंधों के बावजूद भी कितने परिणाम विकृत होते हैं, लेकिन कभी हम अपने अपने आप को उनसे मुक्त नहीं कर पाते, कदम कदम पर हमारे परिणाम कलुषित हो जाते हैं अपनों के प्रति, और वहां उनके परिणाम जरा से विचलित हुए तो वैराग हो गया, भैया अगर ऐसा ऐसा हमारा आत्मीय भाव, अपनेपन का भाव सबके प्रति हो जाए। जरा सा सुनकर के हमारी बहन है और उसके प्रति हमने ऐसे भाव कर ले, और रास्ते से गुजरती हुई किसी बहन के प्रति जब परिणाम खराब हो जावे तो क्या विचार आवे कि हमारी होती इसकी जगह पर तो मेरे परिणाम तो मिथ्या थे। बताइएगा, मैं कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत चंद्र सी बात कह रहा हूं। ऐसे कैसे हमारे अपने जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं और हमारे परिणाम कैसे बिगड़ जाते हैं, कैसे हमसे पाप हो जाता है, काहे के चलते, उस लोभ के चलते। मुझे आपसे कहना यह है, मुझे आपको पांच अनुव्रतों की कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करनी, ना मुझे आपको जबरदस्ती पांच अनुव्रतों का नियम दिलाना। अनुव्रतों का नियम लेने के बाद भी जो है परिणाम निर्मल ले भय, तो वे अनुव्रत लिए हुए भी कोई ज्यादा लाभकारी नहीं। अनुव्रत क्या महाव्रत भी हो, उनको हमें समझना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि कैसी हो जानी चाहिए, अनुव्रत और महाव्रत के बाद कैसी निर्मलता आनी चाहिए, उनको लेने के बाद या कि लेने से पहले ही। दृष्टि निर्मल होकर के लिए गए व्रत तो खैर बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं, लेकिन व्रत नियम लेने के बाद भी दृष्टि निर्मल हो जाए तब भी घाटे का सौदा नहीं है, अच्छा ही है। हम इसीलिए तो पांच अनुव्रत से चर्चा कर रहे हैं कि ये पांच अनुव्रत अहिंसा हमारे जीवन में आ जावे, झूठ से हम बच जावे। कल हमने ये चर्चा करी थी, लेकिन आज मेरे मन में ये आया कि मैं एक एक करके पांचों को बताऊं, पर भी आते एक एक नहीं है, आते पांचों एक साथ हैं, और आते एक के आने से सब हैं। और वो क्या चीज है जिसके आने से सब आ जाते हैं? संतोष आ जावे तो सारे व्रत आ जाते हैं, और असंतोष हो गए तो सारे पाप आ जाते हैं। लोभ कमती हो जावे तो सारे व्रत आ जाते हैं, और लोभ बढ़ता चला जावे तो व्रत इत्यादि का पालन लोभी आदमी नहीं कर सकता। स्वाध्याय लोभी आदमी नहीं कर सकता, वचन का नहीं सुन सकता लोभी आदमी। अपना लोभ अपन ने कमती किया है जब अपन वचन का सुन पा रहे हैं। अबे थोड़ा सा लोभ जागृत हो जाए तो नमोस्तु करके नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ के दुकान पे बैठी दिखाओ। जरा सा लोभ जागृत हो जाए, लेकिन कितना हमने पुरुषार्थ किया अपने लोभ को, ऐसे हम अवसर ढूंढ ढूंढ करके कम करते हैं, गृहस्थ जीवन में भी कम करते हैं। बस यही तो उपाय है उसका। ऐसे हमें और एक एक तो समझेंगे ही अपन आज, लेकिन पांचों पापों को कैसे हम क्षण भर के अंदर और विलीन कर सकते हैं और पांच व्रतों को आसानी से पालन कर सकते हैं, इस पर मुझे थोड़ी सी बात आपसे कहनी थी, वो अपन ने करी। और अपन समझते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सच्चा बनाएं। कल हमने ये विचार किया था, एक दिन हमने विचार किया था कि हिंसा को कैसे मिनिमाइज करें। अब हम अब ये भी विचार कर रहे हैं कि लोभ कमती होने से हिंसा तो कम होगी, लेकिन अकेले उतने से काम नहीं चलेगा, बहुत सी चीजों का और विचार करना जरूरी है। इसलिए अपन और विचार करते हैं, हम अपने जीवन को सच्चा कैसे बनाएं, सच्चे कैसे हो जाएं। सच्चा होना अलग बात है और सच बोलना अलग बात है। सच हुए बिना भी लोग सच बोलते हैं, झूठा आदमी भी सच बोलता है। हां, पूरा जीवन झूठ में गुजर रहा है, लेकिन बोलने को जब बोलता है तो बिल्कुल सच बोलता है। वो भी काम का नहीं है, बताओ। सच बोलना है सच होने के लिए, और सच बोलना है सच होकर के, मतलब महत्व सच बोलने का नहीं है, सच्चे होने का महत्व। और जो सच को पा लेता है, सच्चा हो जाता है, वो तो चुप ही हो जाता है, फिर उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जो बोलता है वो सब सच होता है। महाजना एन गता सा पंथा, भले लोग जिस रास्ते से जाएं वो रास्ता, और भले लोग जो बोले वो ही सच। ऐसा कर लो ना, हम भले हो जावे तो हम जो भी कहेंगे वो सब सच ही होगा, और हम बुरे रहें और हम कुछ भी कहते रहें वो सच नहीं हो सकता। कसौटी तो देखो कैसी है हमारे सच की, हमारे सच की कसौटी भी अहिंसा है। हां, स्थूल मलीकम न बदती न परान वाद यति सप्तमपि विपदे यत्तद् बदंती संता स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल झूठ से बचने के लिए आचार्य भगवंत कहते कि स्थूल झूठ नहीं बोलना और लेकिन सच भी मत बोलना, दूसरे पे विपत्ति आ जाए तो, या दूसरे को विपत्ति में डालने के लिए सच मत बोलना, दोनों चीजें। सच तो बोलना है, बोलना सच ही है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन इंटेंशन क्या है, बोलने का मकसद क्या है, काय को बोल रहे हैं आप सच, ऐसी क्या जरूरत क्या पड़ी जो आप बड़े सत्यवादी हरिश्चंद बनने की कोशिश कर रहे हैं, भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, फंसवाने का तो नहीं दूसरे को, इसलिए सच बोल रहे हो। हां, अपने को साहूकार साबित करने के लिए दूसरे को चोर तो नहीं साबित कर रहे हो, ऐसा हो जाता है, तो सावधान कर रहे हैं कि सच्चे होकर के ही सच बोलना, और देख लेना भीतर से भी अच्छा विचार था सच बोलने का, सच भी बोल रहे लेकिन परिणाम ठीक नहीं मिलेगा तो चिमाने रहो, अब इन्हें बोलो, हां बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं। सेठ जी का बेटा अपनी मां के कहने से हीरे जवाहरात जो रखे थे सेठ जी के, निकाल करके अपने मित्र के यहां जा रहा है कि जाओ इनको बेच करके कुछ सामान ले आओ, घर गृहस्थी चलेगी। मित्र जो हैं वो उन हीरों को देख करके मुस्कुरा देते, कहते बेटे ये हीरे अभी मत बेचो, अभी रखे रहो तुम। तो बेटा कहता कि फिर काम कैसे चलेगा घर का। कहते तुम सुनो, हम मदद करते तुम्हारी, तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, अच्छे मित्र थे, और ये हीरे तुम उनके लाए हो, ये सब रख लो तुम, अभी मत बेचो इनको, अभी तो तुम हमारी दुकान में जो हीरे जवाहरात की है उसमें ही बैठना शुरू करो, हम तुम्हें काम का मेहनताना देंगे और तुम्हारी गृहस्थी चलेगी। अरे बहुत अच्छी बात है। और वो हीरे लाके तिजोरी में रख दियो, फिर हीरों की दुकान पर जो है बैठा, साल दो साल हो गए, एक दिन उसके मन में आया कि अब तो मैं हीरों का पार्क ही हो गया हूं, अब अपने हीरे निकाल करके लाऊं, कीमती से कीमती हैं वे मेरे हीरे और उनको बेचूंगा। सो मां से चाबी लेकर के और हीरे निकालता है, और निकाल करके ठहाका लगा के हंसता है कि सब कांच के टुकड़े हैं। और लेकिन एक बात का दुख उसको होता है कि ये कांच के टुकड़े में तिजोरी में धरे रहा, और अपने आप को पिताजी का मित्र कहने वाले काका जी ने भी जो है ये नहीं कहा कि ये कांच के टुकड़े हैं, जब मैं उनके यहां गया था तो कहती थी धरे रहो, अब इन्हें बेचो। फौरन उनके पास जाता और लहाना देता है कि ये सब चीजें जो है वो ट्रांसफर होती हैं, हम स्वयं झूठा जीवन जीते हैं और अपने बच्चों को भी झूठ में रखते हैं, भ्रम में रखते हैं, हम सच्चाई कभी उनको नहीं बताते, ना संसार की सच्चाई ना अपने जीवन की सच्चाई, बल्कि हम उन्हें और प्रेरित करते हैं कि वे भी ऐसा ही जीवन जिए जैसा झूठा जीवन हम जीते चले आए। हम कभी उनके सच्चे बोलने का सम्मान नहीं करते, ना स्कूल में, ना घर में, ना कहीं और। पर यह बात और अपन आज अपने जीवन में सीख ले कि नहीं भैया, अगर मैं सच नहीं बोल पाता हूं तो कम से कम जो सच बोलता है उसका सम्मान तो करना चाहिए, अगर मैं सम्मान भी नहीं कर पाऊं तो सच बोलने वाले का मेरे से निरादर तो ना हो, अपमान तो ना हो जाए। जब जब भी सच बोलने वाले को दंड मिलता है तब वो सच बोलना छोड़ करके दंड से बचने के लिए झूठ बोलना शुरू करता है। अपने जीवन में झांक के देखना कि हम कितनी बार अपनी आत्मरक्षा के लिए दिन भर में झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें भय है कि अगर हम सच बोल देंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, हमारे अपने कहलाने वाले लोग भी हमें छोड़ देंगे, हमें यह भय खाए जाता है, क्योंकि हम सच का सम्मान नहीं कर पाते हैं, या कि झूठ का सम्मान होते देखते हैं, सच को अपमानित होते देखते हैं और झूठ का सम्मान होते देखते हैं, तो अगली बार हिम्मत नहीं होती है कि सच बोले। एक बेटा आया था मेरे पास विदिशा में, 5 बरस का, पिता लेके आए थे उसको, वो दुखी थे। मैंने कहा क्या बात हुई? कहते इसने आज मेरे से पहली बार जिंदगी में झूठ बोली, ये मेरे से कभी झूठ नहीं बोलता, ना मैं इसको झूठा बनाना चाहता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं इसके सामने तो कम से कम, और इससे भी यही अपेक्षा रखता हूं कि ये सच बोले, और ये वाकई मेरे सामने सच बोलता, लेकिन आज इसने झूठ बोला। मैंने कहा फिर आप मेरे पास छोड़ दीजिए उसको, मैं बात कर लूंगा, आपके सामने तो नहीं करूंगा बात। मैंने उससे बात की कि तुमने झूठ बोला पिता से? कहता कि हां बोला। बात क्या थी? बोले कुछ नहीं महाराज, कल हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में बहुत दर्द था, हमसे मैथमेटिक्स के सब सवाल बनते थे लेकिन दर्द होने की वजह से हम नहीं कर पाए। हम जब स्कूल पहुंचे तो वहां पर गुरुजी ने कहा कि जो जो बच्चे सवाल करके नहीं लाए वे खड़े हो जाएं। मैं तो सवाल करके ले ही नहीं गया था, मैं खड़े हो गया, और गुरुजी ने मेरे पास आके पूछा कि तुमने क्यों नहीं किए, तो मैंने बहुत साफ कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द था, सवाल तो मेरे से सब आते हैं, आप आधे घंटे का समय दें, कोने में बैठ के मैं सारे सवाल हल कर दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे 2-4 तमाचे दिए, और मैं देख रहा था कि मेरे बाजू में जो लड़का बैठा उसने भी एक सवाल नहीं किया, लेकिन काफी बंद रख के जब गुरुजी ने उससे पूछा तैने कर लिए, कहते कर लिए, उसने झूठ बोल दिया, गुरुजी आगे बढ़ गए। मुझे पहली बार जीवन में लगा कि मैं भी अगर कह देता कॉपी बंद किए बैठा रहता सच नहीं बोलता तो मुझे भी 4 लोगों के सामने चांटे नहीं पड़ते। अब मैं घर जाकर के रास्ते में विचार करता रहा महाराज कि मैं घर जाके अगर ये बात पिता से कहूंगा तो पिता भी मुझे नाराज ही होंगे कि मुझे आज तमाचे पड़े हैं, मैं घर का स्कूल का जो सबक था वो करके नहीं ले गया। इसलिए मैंने पिता से भी पहली बार कहा, मैं उदास था तो पिता तो समझ गए कि कुछ हुआ होगा, लेकिन मैंने उनसे छिपा लिया कि मुझे आज पिटाई पड़ी है, मैंने उनसे भी झूठ बोल दिया। नहीं तो मैं हमेशा जो कुछ भी होता था मैं पिता से जाके कहता था, और मैं कहता जरूर पर मुझे ये भय लगा कि यहां भी मुझे अब झूठ बोल देना चाहिए, बस इतना ही मुझे आपसे कहना। बताइए इस घटना को जब जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही तो है, हम सबके साथ भी ऐसा ही है, हमारे सच्चाई का कोई सम्मान नहीं करता और झूठ को हम सम्मानित होते देखते हैं, तो फिर कौन होगा जो सच्चा बनना चाहेगा और सच बोलना चाहेगा। भैया अपन मन बनाए अपना कि अगर अपने बच्चे या अपना कोई व्यक्ति सच बोलता है तो भले ही वो बात अप्रिय भी लगे अपन को, लेकिन सबसे पहले उसकी पीठ थपथपाना चाहिए कि बहुत साहस किया तुमने, सच तो कहा कम से कम, भले वो बात अप्रिय है पर सच तो कहा। फिर हम सीखेंगे बाद में कि सत्यम वद प्रियम वद, अप्रियम सत्यम ना वद, ये हम बात को सीखेंगे, लेकिन अभी तो सत्य कहना सीखें भले वो अप्रिय क्यों ना हो, और उसका सम्मान करें। मैं सोचता हूं आज इतना ही पर्याप्त है कि हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि कितनी हमारी आत्मीयता बढ़ रही है, कितना हमारा प्राणी मात्र से मैत्री भाव बढ़ रहा है, जितना जितना बढ़ता चले जाएगा उतना पाप कम होता जाएगा, और जो हम अपने जीवन को सच्चा बनाना चाह रहे हैं, अच्छा बनाना चाह रहे हैं, वो तभी संभव है जबकि मैं अपने जीवन से झूठ को कम करते चले जाऊं। जैसे मैंने हिंसा को कम किया है वैसे ही मैं अपने जीवन से अनावश्यक झूठ को, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक भयवश कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, बहुत से झूठ दिन भर में बोलता हूं, तो उनसे भी मैं बचने की कोशिश करूं, इसी भावना के साथ कि हम सब निरंतर प्रयास करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। वेरा के साथ आर्टिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहा, साइंटिफिकली भी और मॉरल नैतिक रूप से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, नैतिक दृष्टिकोण से भी, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी और कला की दृष्टि से भी, सभी दृष्टियों को ध्यान में रख करके और मंदिर बनाए जाते हैं। बिल्डिंग और टेंपल में यही फर्क है, कला का फर्क है, उसके साइंस का फर्क है। लेकिन आज जो है वो ये सब चीज गड़बड़ा गई। मंदिर का साइंस बिल्कुल अलग है, मंदिर का आर्ट बिल्कुल अलग है घर से। अब विचार करें अपन कि मंदिर के जो भी खिड़की दरवाजे बनाए जाएंगे सब आर्च शेप में बनाए जाएंगे, प्लेन नहीं होंगे, आर्च शेप में बने होंगे। मंदिर में जो स्टोन काम में आएगा वो ऐसा स्टोन होगा जो हमारी आवाज को कई गुना कर दे, इस तरह का स्टोन लगाया जाएगा। पत्थर इस तरह का या पत्थर नहीं लगाया जाएगा, पत्थर के बनते थे या फिर चूने के बनाए जाएंगे ताकि वे हमारी आवाज को एब्जॉर्ब नहीं करें बल्कि उसे वापस हम तक लौटा दे। गुंबद के पीछे भी यही उद्देश्य था कि वे हमारी बात कई गुनी करके हम पर वापस भेज देवे। इस तरह से ये सारी चीजें रखी गई थी। अगर अपन गौर से देखें तो अगर हम मंदिर के भीतर जोर से आवाज करेंगे तो उससे कई गुनी होकर के हमारे ऊपर आएगी। हम ओम बोलेंगे तो ओम वापस लौट के आएगा, हम गाली देंगे तो गाली भी लौट करके आएगी। वो इस बात का इंडिकेशन है, वो इस बात की सूचना है कि ये संसार हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम यहां जो करते हैं वही हम तक लौट करके आता है। ये मंदिर हमें सिखाता था, ये धार्मिक दृष्टिकोण था। और ध्वनि के द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है, इसलिए हमने पूरे मंदिर में इस तरह के स्टूल लगाए थे कि जिनमें जरा सा इशारा किया और उनमें से ध्वनि निकलना शुरू हुई। वो ध्वनि जो है मंदिर को प्यूरिफाई करती थी। जबकि मंदिर के खिड़की और दरवाजे छोटे छोटे, खिड़कियां बहुत कम, दरवाजे भी बहुत छोटे, बताइए ध्वनि वहीं के वहीं रह जाए। अगर छोटे दरवाजे लगे होंगे तो हवाएं और पूरी तरह से उसको कैसे प्योर करेंगी? तो कहते हवाओं से प्योर नहीं होता मंदिर, मंदिर तो ध्वनि से प्योर होता है। घर में क्रॉस वेंटिलेशन बनाएंगे चौके में और सोने के स्थान में, किधर से हवा आए और उधर से निकल जाए, ये घर का साइंस है। मंदिर का ये साइंस नहीं है कि इधर से हवा आए और वहां निकल जाए। मंदिर में तो कम से कम हवा आए, भीतर का वातावरण बाहर से प्रभावित ना हो, भीतर का वातावरण इतना सेफ रखा गया, छोटा सा दरवाजा है ताकि वहां की एनर्जी वहीं के वहीं पर रही आवे। देखिएगा आप, एनर्जी बाहर ना जाए, बाहर का प्रभाव कम से कम पड़े, ये उसके पीछे साइंस था। और मॉरलिटी क्या थी कि हम झुक करके जाएंगे, ये कोई ऐसे अकड़ करके और प्रवेश करने का स्थान नहीं है। यहां तो हम झुक करके जाएं तो अपने आप, अगर हम थोड़ा सा सिर ऊपर उठाएंगे तो टकरा जाएगा हमारा सिर। तो वो मॉरलिटी थी। और साइंस के हिसाब से एनर्जी का क्षरण ना हो, जो भीतर एनर्जी क्रिएट हुई है ओंकार की ध्वनि से, पूजा से, घंटे के नाद से, अभिषेक के द्वारा, सब में नेगेटिव आइंस बनते हैं सब क्रियाएं। अगर थोड़ा साइंस किसी ने पढ़ा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, आयनाइजेशन होता है, OH और H आइंस निकलते हैं, OH आइंस पूरे में फैल जाते हैं, नेगेटिव आइंस। वो क्या करते हैं, नेगेटिव आइंस हमारे हीमोग्लोबिन की प्रोसेस को प्रॉपर करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये नेगेटिव आइंस का काम है। जिस दिन दुनिया में नेगेटिव आइंस खत्म हो जाएंगे उस दिन आदमी का हीमोग्लोबिन ठप हो जाएगा, सांस लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया वो वहां बढ़ जाती है। वो डैमेज ना हो जाए इसके लिए छोटा सा दरवाजा है, बहुत जितने छोटे से दरवाजे में बड़ा हाइजेनिक लगने लगता है, अनहाइजेनिक कहना चाहिए, अपवित्र जो है कैसा हो जाएगा एकदम गुमसुम। लेकिन नहीं होता मंदिर गुमसुम, मंदिर में जरा सा दरवाजा है फिर भी वहां भीतर जाकर के और कहीं सफोकेशन या इस तरह का नहीं लगता, अगर मंदिर ठीक तरह से बनाया होगा। तो साइंस का भी आर्ट के हिसाब से भी आर्च बनाना, ये आर्टिस्टिकल, हर एक खंबे को सिंपल नहीं बनाएंगे, खंबे पर डिजाइन बनाएंगे, दीवालों पर चित्रकारी करेंगे, पूरा आर्टिस्टिकल मंदिर। तो हमने कला का भी, ताकि हमें वहां जाकर के सौंदर्य बोध हो, हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाए उस सब को देख करके। तो मन की प्रसन्नता भी है, विनय भी हमें प्रकट करनी है तो उसका भी ध्यान रखा गया है, हमें लाभ हो इस विज्ञान का भी ध्यान रखा गया है। धार्मिक दृष्टि से तो भगवान वहां विराजे ही हुए हैं, उनसे हम वीतरागता का पाठ लेंगे। इस तरह देखें तो मंदिर की एक एक चीज जो है वो इन चारों चीजों को दृष्टिकोण में रखी गई, हमें सौंदर्य का बोध भी हो, हमें लाभ भी हो, विज्ञान भी उसके साथ हो, धार्मिक भी हो और नैतिकता से। कोई व्यक्ति नहीं भी झुकना चाहे तो झुको, नहीं है अभी आपके अंदर झुकने का भाव, तब भी मंदिर में प्रवेश का द्वार आपको झुकने के लिए प्रेरणा देगा। जबरदस्ती झुकना पड़ेगा, जैसे कि मां अपने बेटे को लाती, नहीं झुकता है तो कहती ढोक दो, और नहीं करता तो गर्दन से दबा देती कि दो तो चूहो तुम, तुम्हारी अकड़ यहां तो कम होनी चाहिए अकड़, यहां भी अकड़े अकड़े फिरोगे तो कहां जाओगे फिर। इसी तरह से जो है सब चीजें मंदिर में, क्या घर गृहस्थी वाला समाधि मरण कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? श्रावक भी करता है, सामान्य गृहस्थ सदगृहस्थ भी करता है, मुनि महाराज भी करते हैं, तीनों जन के लिए तो है ही। केवली भगवान के समाधि मरण को तो अपन निर्वाण कहते हैं, उसके बाद तो उनका जन्म मरण होने ही नहीं। पर पांच प्रकार के मरण में से तीन प्रकार का मरण अच्छा माना गया, एक है बाल मरण, नहीं एक है बाल बाल मरण, एक है बाल मरण और एक है बाल पंडित मरण, और एक है पंडित मरण, और एक है पंडित पंडित मरण, ऐसे पांच भेद करें। बाल मरण मतलब, बाल बाल मरण मतलब मिथ्या दृष्टि जीव का मरण, और बाल मरण मतलब सम्यक दृष्टि तो है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो है, पर व्रत नियम कुछ नहीं लिए, सदगृहस्थ है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाला है, उसके मरण को कहेंगे बाल मरण। और फिर अगर वो अनुव्रत ले ले, प्रतिमा इत्यादि ले ले, तो उसके मरण को कहेंगे बाल पंडित मरण। और अगर महाव्रती हो जाए, मुनि महाराज हैं, उनके मरण को कहेंगे पंडित मरण, बुद्धिमानी का काम किया है। और केवली भगवान का मरण पंडित पंडित मरण कहलाता है। पूर्व दिशा में जो भी केवली, शुद्ध केवली, महामुनि राज, रिद्धिधारी मुनि राज जो भी हुए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं, फिर दक्षिण दिशा में प्रणाम करता हूं, पश्चिम में प्रणाम करता हूं, और उत्तर दिशा में सबको प्रणाम करता हूं। अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 10 मिनट 15 मिनट एक घड़ी दो घड़ी जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं बैठ रहा हूं, पंच नमस्कार मंत्र पढ़ूंगा, मैं समस्त पर पदार्थों का त्याग करता हूं। इतनी बनती हैं, उनका कोई कारण हो सकता है? एक तीन पांच, एक और तीन, बस इतनी ही कटनी बनाने का विधान है मंदिर पर। वो असल में गंधकुटी का प्रतीक है भैया, गंधकुटी में तीन कटनी होती हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या मन वचन काय की, यह तीन लोक के स्वामी हैं, इस बात की प्रतीक हैं वो, इसलिए तीन, जहां तीन की सुविधा नहीं होती वहां कम से कम एक तो बनाते ही हैं, बेस रहेगा और उसके बाद एक छोटा सा स्टेप, कम से कम एक स्टेप, नहीं तो तीन स्टेप का विधान है, तीन से ज्यादा का विधान नहीं है, वो उस तीन लोक के स्वामी का और रत्नत्रय का प्रतीक है। इस दृष्टि से जो है वो तीन ही बनाई जाती, तीन प्रतीक्षा बिगड़े हुए थे, अब थोड़ा थोड़ा सुधार आया है। हमारे अंदर के भाव होते हैं कि मैत्री भाव सब जीवों से रहे, सब जीव धार्मिक आचरण करें, उत्तम सुख को प्राप्त कर लें, लेकिन दूसरों के कहने पर कभी कभी हमारी, दूसरे से कहने पर कभी कभी वो हमारी हंसी उड़ा देते हैं। बस इतने से आप डर जाते हैं क्या? बहुत से लोग बात मान भी लेते हैं, मान भी गए, धर्म में लग गए, तो हमारा ये भाव जारी रखें या बंद कर दें? क्योंकि आप कहते हैं कि स्वपर के कल्याण की भावना रखो, अब आप बताओ कि हम क्या करें? निवेदन है प्रश्न धीरे धीरे पढ़ें, उत्तर भी धीरे धीरे दें। नहीं तो आप जल्दी जल्दी से जो है प्रश्न पढ़ देते हैं। हमने प्रश्न तो अच्छे से पढ़ा नहीं, अब उत्तर भी धीरे धीरे कैसे, धीरे धीरे कैसे बनेगा। मतलब देखो ऐसा है, आप अपना आचरण सुधार रहे हैं ये बहुत अच्छा है, आपका सब जीवों से मैत्री भाव है ये भी अच्छा है, सफर कल्याण की भावना होना भी बहुत अच्छा है। मैं इन सब बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक बात का समर्थन नहीं करता कि किसी को जबरदस्ती सुधारने की चेष्टा करी जाए, दूसरे का उसके बिना चाहे कल्याण करने की हमारे यहां परंपरा नहीं है। जब तक कोई अपने कल्याण के लिए उत्सुक ना हो तब तक आप जबरदस्ती उसको कल्याण करने के लिए प्रेरित करें इसकी आवश्यकता नहीं है। आप धैर्यपूर्वक अपने आचरण से, अपने आचरण से, वाणी से नहीं, अपने आचरण से उसे इस बात का एहसास करा दें कि धर्म करना श्रेष्ठ है, और उसे भी भीतर से उमंग होने लगे कि हां सचमुच मुझे धर्म करना चाहिए। और भैया धर्मात्मा की अगर कोई हंसी उड़ावे तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी अज्ञानता पर दया करनी चाहिए। हैं, जब जब भी यूनिवर्सिटी में पानी, एक तो बहुत कम पिया, पानी पीने के लिए छन्ना निकाला तो ये आ गए पंडित जी, ये आ गए ब्रह्मचारी, ऐसे शब्द सुनना पड़ते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना फर्ज तो पूरा करूंगा, आपको जो कहना हो वो कहो। आपको एक घटना सुनाऊं, जब कैंप में गए, 25 दिन का कैंप था, और अपने उसमें रुके जहां पर, तो एक एक दो दो स्टूडेंट को एक एक रूम मिला था, और नदी जो है 1 किलोमीटर दूर थी, पानी वहीं अच्छा मिलता था नदी में ही, बाकी जो पानी आता था वो तो एक ड्रम में भरा रहता था, सब लोग जो है उसी पानी को पिया करते थे, सारे स्टूडेंट्स, अपने को मन में पोसाता नहीं था वो, क्योंकि अपन ने एक दिन देख लिया था, बाद को देखा वो तो, लेकिन पहले से ही मन में नहीं था। और नदी से 1 किलोमीटर से अपनी बाल्टी भर के लाना, छान करके अपने कमरे में रखना, कल तक के लिए फुर्सत हो गए। इतना ही धर्म ध्यान अब इतना नहीं चलता था कि हम बहुत बार बार छाने, पर एक बार छान के रख लिया। अब एक बार क्या हुआ कि टूर से 4 बजे वापस आते थे और इतने थके हारे आते थे कि पता नहीं लगता था कि क्या पिया और क्या खाया, सब गिर पड़ते थे खाने और पीने पर। तो सीधा उसमें से ड्रम में से, और उस दिन आ गए 2:30 बजे आ गए, तो जरा मस्ती में थे सब, रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर जो है उनने कहा चलो अब पानी वानी पिए, तो ड्रम में पानी भरा था। अब कभी नहीं देखते थे ड्रम में पानी, लेकिन उस दिन जब 2:30 बजे आ गए तो देखा कि उसी ड्रम में से मग्गा डोप करके टॉयलेट भी जा रहे थे लोग। हाँ, उसी ड्रम में से बाथरूम लैट्रिन के लिए भी लोग जो है पानी लेके जा रहे थे, उसी में से ये लोग भी पानी पीते थे सब। अब उनमें से एक ने कहा यार ये तो गड़बड़ है यार, ये तो रोज होता होगा ऐसा, आज तो अपन ने देखा, क्योंकि अपन तो 4 बजे लौट के आते सुबह के, गए तो उसमें झांक करके देखा तो वो छोटे छोटे जो जीव नहीं हो जाते उसमें है, वो ऐसे करते रहते हैं, नीचे नीचे रहते हैं, वो भी थे उसमें, उसी में से रोज पीते थे। अब क्या करें, अब उस दिन तो पानी पिए नहीं गया, तुमने कहा मिस्टर जैन के पास पानी रखा होगा, ऊपर आया हमारे पास। अब अपन अपने मौके का लाभ तो पूरा उठाते हैं, हमने कहा भैया आप लोगों का तो छने पानी पीने का त्याग है कि नहीं, और हमारे पास छना पानी है, तब छने पानी का तो आपको त्याग है। अरे नहीं कह ले यार, मजाक मत करो, बहुत प्यास लगी है। हमने कहा सुनो ये पूरी बाल्टी पानी पिला दूंगा सबको, लेकिन मेरी बाल्टी भर के लानी पड़ेगी। तो बोलते एक नहीं 2 बाल्टी भर के लाएंगे। फिर सबने पानी पिया, थैंक्स दिया। मैंने कहा मुझे बाल्टी भर पानी नहीं चाहिए, मैं और भर के ले आऊंगा, पर इतना जरूर करो कि किसी पानी छानने वाले का मखौल नहीं उड़ाना, बस इतना ही कर लो मेरे लिए अगर कर सको तो। उन्होंने उस दिन के बाद किसी भी स्टूडेंट ने पानी छानने वाले का कभी मखौल, मैंने फिर जितनी बार भी कोशिश, माने जब भी मैं पानी छानता था तो सब कहते थे कि नहीं ठीक, उस दिन हमें नसीहत मिल गई। हाजी द्वारा दी जाती है, और क्यों दी जाती है? अरे वाह, ये भी एक नया प्रश्न है। सिंघई की पदवी समाज देता है या कि महाराज जी वगैरह के द्वारा दी जाती? क्यों दी जाती, कब दी जाती, उदाहरण देके बताइएगा। ये मुझे जैसा इतिहास का, मैं वैसे विद्यार्थी नहीं रहा, ना इतिहास मेरा विषय रहा, मुझे ना इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है इतिहास विद्यास में, लेकिन जैसा बड़े लोगों से सुनने में आया कि ये पहले और जिनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा कराते समय और जो लोग रथ इत्यादि चलवाते थे तो उनको ये उपाधि समाज देती थी। समाज का ही ये है, धर्म से इसका कोई न महाराज से इसका कोई संबंध है। सिर्फ धर्म से संबंध है इसका, ओ सॉरी, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था है ये, और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। और वो भी कब दी जाती थी? जब एक ही व्यक्ति रथ चलवाता था। अब तो एक व्यक्ति चलवाता नहीं, कलेक्शन होता है सारा, फिर सब लोग मिलकर के करते हैं उसको। पहले तो एक अकेला व्यक्ति और फिर पूरी जीवनार देता था, हाँ सबके लिए, पूरे जितने भी लोग आएंगे उन सबको जिमाएंगे और रथ भी चलाएंगे। रथ में जो घी डालने का काम था वो वही व्यक्ति करता था। रथ के जो आरे हैं उनमें निरंतर फेरी के दौरान एक ही काम है, घी डालो। वो इतना बड़ा आदमी जो है और सबको बिठा लेगा, समाज के सब बैठे हो उसमें रथ में, लेकिन घी कौन डालेगा? धुरा में, धुरा में घी हम डालेंगे। उसमें पहले की पत्रिका हमने आपको नहीं सुनाई, पहले बहुत पुरानी पत्रिका छपती थी एक, हमारे पूर्व जन्म के किसी पुण्य के उदय से भगवान की प्रतिमा पधरवावे के और आप पंचन के जूठी पातर उठावे के भाव भय है, बताओ। वो कह रहा है कि हमारे पुण्य के उदय से भगवान की प्रतिमा पधरवावे के और आप सब पंचों की जूठी पातर उठावे के, मतलब हम जीवनार दें सो आपकी जूठी पातर हम उठाएंगे। ऐसी बड़ी विनय से भर करके, बड़ी भावनाओं से भर करके पंचकलानक प्रतिष्ठाएं जब होती थी, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी राशि का सदुपयोग किया जाता था, गाड़ी कमाई का सदुपयोग किया जाता था, तब जाकर के उसको सिंघई, सवाई सिंघई, फिर सेठ, फिर सर सेठ, फिर श्रीमंत, इस तरह की ये उपाधियां। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है सर सेठ की उपाधि दिया करती थी, श्रीमंत की उपाधि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी पहले। ऐसा भी था जैसे सरसेठ हुकमचंद जी, जैसे कि उधर सरसेठ भागचंद जी अजमेर में, ऐसे करके। तो सुसाइडल केस है सर लेखना को। अभी इंडिया टुडे में भी जो है दोनों तरह के लेख आए कि ये संथारा या सर लेखना जो है एक तरह का आत्मघात है। फिर उसका क्लैरिफिकेशन किसी जैनी व्यक्ति ने उसमें छापा था, दोनों चीजें हुई। बात असल में यह है कि जब हम जीवन से निराश होकर के और अपने जीवन को नष्ट करते हैं तब वो कहलाता है आत्मघात। जीवन से निराश हैं, संक्लेश परिणाम पूर्वक, निराशा पूर्वक जीवन को नष्ट किया है। और जब जब हम जागृत हैं और बिना किसी राग द्वेष के, और ये देह जाने को ही है और हमने धीरे से उसको छोड़ दिया है, तो ये बिना संक्लेश के, बिना राग द्वेष के समता पूर्वक देह को छोड़ना, इसको बोलते समाधि या कि संलेखना। दो ही बार टूटते हैं वीणा के तार, या तो किसी अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो वीणा के तार टूट जाते हैं, या फिर बहुत बड़ा कलाकार हो जब वीणा बजाते बजाते और चरम पर संगीत पहुंचता है तब वो तार अपने आप टूट जाते हैं। जिसने अपने जीवन की वीणा पर पूरा संगीत बजा करके और बाद में सांसों के तार टूट गए हैं तो वो जीवन तो सफल हो गया, और किसी अनाड़ी आदमी ने और अपनी जीवन वीणा के सांसों के तार झटके दे दे करके तोड़े हैं तो वो तो सुसाइडल केस ही कहलाएगा। ये दोनों में इतना बहुत डिफरेंस है भैया, इसलिए आप इस संलेखना को, क्षमता पूर्वक तान छोड़ने की प्रक्रिया को आप आत्मघात नहीं कह सकते कृपा करके, क्योंकि वो कालापन जो है वो धर्म में श्रेष्ठ नहीं है, वहां तो उज्ज्वलताओं का ही सम्मान है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं वो उज्ज्वल और सफेद पीले या केशरीय वस्त्र पहन के किए जाते हैं। काले नीले ऐसे कपड़े पहन करके कोई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, धार्मिक अनुष्ठान मारण तारण उच्चाटन के मंत्र वंत्र सिद्ध किए जाते हों तो भगवान जाने, लेकिन कर्मों की निगरा करने के लिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है। किसने की सारे रंगों को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, रंगीनी खत्म हो गई। जो यम पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं और संसार की सारी रंगीनी जिनने छोड़ दी है, उनका कमंडल काला हो गया। देखिए कितना साइंटिफिक है। अब उस काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता, संसार का कोई रंग नहीं चढ़ेगा उस आदमी के ऊपर, और ये आदमी सीधा डायरेक्ट फाइट कर रहा है अपने जन्म मरण की प्रक्रिया से, इसलिए काला रंग। वहां तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी धार्मिक अनुष्ठान में काले रंग को कोई अपने यहां पर आए और उसको काले झंडे बताओ तो क्या किस बात की सूचना होगी? वापिस लौटो, हम आपको स्वीकार नहीं करते। तो ये अस्वीकृति है, काला रंग जो है वो सबको अस्वीकृत करता है। संसार भिलाई की बात है, भिलाई स्टील प्लांट में वो उसकी ड्यूटी थी गेट पर कि कोई भी मेटल पीस बाहर लेके ना जाए, आपको चेक करना, इस बात का उसको पैसा मिलता था। और वो कहता है मेरे से आकर के कि यदि छोटे छोटे से लोग वहां काम करते हैं, खाने पीने को उनको बहुत कम है, वे एक छोटा सा पीस लेके जाते हैं मेटल का, स्टील का, 50 पैसे 1 रुपए में बाहर बिक जाता है, मैं अगर उनको रोकूं तो मुझे लगता है कि इनकी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। मैं अगर उसमें लिख दूं कि उन्होंने इतना मेटल पीस चुराया है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। और मैं फिर सोचता हूं कि अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो मैं उसको चोरी करवा रहा हूं, और जिनसे मैं पेमेंट ले रहा हूं उनके प्रति ठीक भाव नहीं रख रहा हूं। इतने कॉम्प्लिकेशन इसमें तो बहुत कम है। तब मैं भी सोच में पड़ गया था। फिर मैं रत्नम श्रापकाचार उसी समय पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह और वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि श्रावक को सबसे पहले निर्णय में दया का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति मेटल, मैंने उसको कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेटल पीस चुरा के ले जाता है तो उसको पहली वार्निंग दे दो कि देखो ये काम नहीं करना, मैं किसी भी दिन लिख सकता हूं, ये पहली बार है इसलिए छोड़ता हूं। दूसरी बार कहे तो इतने शब्द कहने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ कह देना ट्वाइस, 2 बार हो चुका, दया हमने कर दी, छोड़ दिया आपको, लेकिन हमारी भी नौकरी है, जिनसे हम पेमेंट लेते हैं उनके साथ हम ईमानदारी रखेंगे, इसलिए तीसरी बार भी अगर वह वही चोरी की प्रक्रिया दोहराता है तो आप लिख दें, फिर आप दोषी नहीं माने जाएंगे। बस इतना ही मुझे इसमें आपसे कहना है। महाराज जी को आहार जरूर देना अपने को।
उसने मुझे दिए थे 1984 में और मैं 12 साल बाद खरगोन पहुंचा था, और वहां पर जो है उसने कहा कि महाराज जी को हमने बहुत आहार दिए, अपने यहाँ चौका लगाएंगे। उनके यहाँ कोई चौका वोका नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि अरे क्या चौका, इन महाराजों का तो सब साथ में चलता, उनके चौके वोके वहाँ जो महाराज चलते थे उनका सब अरेंजमेंट रहता था। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इन महाराज के साथ कोई चौका वोका नहीं चलता, अपन तो लगाओ आ जाएंगे। सबने उसने लगवाया और मैं कर्म धर्म संयोग से मैं इस तरफ ना मुड़ के उधर मुड़ गया था और उसके यहाँ पड़गाया गया था। चली गई वो अभी आज दोपहर में आई थी, पड़गा हो गया और आपने मुझे पहचान लिया। फिर
में ऊन में रहा 6 दिन तक, तो वो सारी उनकी फैमिली ऊन में चौका लगाए वो पड़ी रही। और आज भी उसके बाद से इतने साल हो गए, 1-2 बार साल में हम चलेंगे महाराज के पास में, और बच्चों को भी वो ये सिखा रहे थे कि देखो महाराज जी को आहार देना ऐसे करना ऐसे करना। हम संस्कार देना चाहें बच्चों को तो संस्कार देंगे तभी तो आगे धर्म बढ़ेगा भैया, गृहस्थी ठीक नहीं चलेगी तो धर्म वर्म सब चौपट।
जैन बौद्ध धर्म बाहर हो गया, क्योंकि बौद्धों के भिक्षु तो रहे लेकिन श्रावक नहीं रहे इंडिया में, तो भिक्षु अकेला क्या करेगा? मुनि रहे और श्रावक न रहे तो गाड़ी गड़बड़ चलेगी नहीं। ऐसा सोच करके अपन को अपने बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन बाई फोर्स नहीं, प्रेम से। मैं फिर आपसे कहूं बार बार, ये बाकी रह गए मैंने थोड़ी
भाव जगत में।